الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم اگر ہمیں ان چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں تو شاید ہم روزے کو کبھی چھوڑیں بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل یہ چیز جو روزے کی حالت کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوتا ہے، ایک عام تھنکنگ، عام لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ وہ نظام ہضم یعنی کہ معدے پہ بیسیکلی اثر ہوتا ہے، اور عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو ہاضمہ ہے وہ ہمارا معدے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن کیا صرف معدے تک محدود ہے ہمارا ہاضمہ یا کوئی اور بھی سسٹم ہاضمے میں انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر؟
اور سب یہ نظام ہاضمہ جو ہوتا ہے یہ پورا لمبا پروسیس ہے، یعنی منہ سے لے کے مطلب سمجھ لیں کہ معدا، کھانے کی نالی، پیٹ، پھر اس کے بعد چھوٹی آنت، پھر بڑی آنت، یہ پورا ایک تو سسٹم ہو گیا،
یہ نظام ہضم کا سسٹم ہے
ایک ہو، اس کے ساتھ سپورٹیو سسٹم بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
جگر بھی ہو گیا، پتا بھی ہو گیا، لبلبہ بھی ہو گیا، منہ کے اندر جو تھوک بننے کے جو حدود ہوتے ہیں
جی،
جو سلیوری گلینڈ کہلائے جاتے ہیں، یہ بھی پارٹ آف ڈائجسٹو سسٹم ہے،
ٹھیک ہے،
یہ بھی ایک پروسیس کا عمل ہے۔ اب جیسے آپ نے پہلے سلسلے میں اپنا بیان فرمایا تھا کہ جیسے کوئی چیز منہ میں لی
جی،
لیتے ہی سارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے،
بالکل،
تو اب آپ یوں سمجھ لیجیے ہم نے سحری کر لی، سحری کرتے ہی ہم نے کھانا روک دیا، کھانا تو بیسیکلی ہم نے روک دیا لیکن سائیکولوجیکلی بھی ہم نے کھانا روک دیا، ٹائملی کلاک ہوتی ہے باڈی کی کہ دماغ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب یہ کھانا نہیں کھانا، تو جیسے حدود ہے، جگر ہے، پتا ہے، لبلبا ہے، یہ آتے ہیں، یہ ان کے اندر بالکل ریسٹنگ اسٹیٹ آ جاتا ہے، ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہنگر پینس کہلاتی ہیں، جو خالی پیٹ کے اندر جو بیسکلی وہ آتی ہے، پیٹ کے اندر لگتا ہے کہ کچھ
ہلکے ہلکے درد میں
درد میں یہ بیسک ہنگر پینس کہلاتی ہیں، یہ ہوتی ہیں ہارمون بیس، اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو چیزیں جمع ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، فضول مادہ جو جمع ہو جاتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں، ایسڈ، تیزابیت وغیرہ، وہ پورے سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے تک سمجھ لیں صفائی ہو رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں اس میں اس کو اس طرح لے کہ نظام ہضم ایک نام بہت چھوٹا سا ہے اس کا، لیکن اگر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کے بہت سارے جسم کے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو کور کر رہا ہوتا ہے،
جی،
جیسے مثال آپ نے دی کہ منہ سے لے کے آپ جو ہے آنتوں تلک اگر آ جاتے ہیں آپ،
جی،
تو یہ کمپلیٹلی حصہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے، اور جگر اور پتا اور تلی وغیرہ جو ہے وہ سب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ نظام ہضم کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو نظام ہضم میں جیسے ہی آپ نے کوئی چیز منہ میں لی، ابھی تو معدے میں جانے میں بھی اس نے ٹائم لینا ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ چیز منہ میں ہی ہوتی تو آپ کا جگر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سسٹم آپ کا آٹومیٹکلی ریگولیٹ ہو جاتا ہے، اسٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، اگر آپ وہ چیز نہیں لیتے ہیں تو آپ کو وہ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور ریسٹنگ پوزیشن میں اس کی صلاحیتیں کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ کوئی چیز اگر ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ روزے کے فوراً بعد نظام ہضم پہ، تو وہ جو چیزیں لیتے ہیں کہ آپ نے ایک دم ہیوی ڈائٹ لے لیتے ہیں اٹھا کے، تو اس کے اوپر نظام ہضم پہ، ایک تو آپ نے 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا فاسٹنگ میں آ گیا، آپ نے معدے کو سیٹ کر لیا، سب چیزیں سیٹ کر لی، ایک دم وہ جو چیز آپ افطار کے ٹائم پہ لے لیتے ہیں، کیا اس سے کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟
جن لوگوں نے آپریشن کروائے ہوں گے نا، ان کو تجربہ اچھا ہوگا کہ آپریشن سے پہلے این پی او کر دیا جاتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کی فاسٹنگ
خالی پیٹ کر دیا،
خالی پیٹ، پھر ان کا آپریشن ہو جاتا ہے، آپریشن کے بعد ان کو کیا فوراً کھانا دے دیا جاتا ہے؟
نہیں، ان کو
نہیں،
انتظار کرتے ہیں،
انتظار کر، پہلے کیا دیا جاتا ہے؟ فلوڈ،
جی،
اور سلولی اینڈ گریجولی دیا جاتا ہے، تو سیم اسی طرح روزے کے اندر بھی ہم کو کرنا ہوتا ہے افطار کے وقت پہ، ہمیں ایک دم سے کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے، کچھ ایسی اسٹڈیز گزری ہیں نظر سے कि अब जैसे खाने की नाली है और मैदा है, कुछ यंग एज हैं कुछ ओल्ड एज हैं, अब ये खाली है, ये रिपेयर हो चुका है, जिस हद तक भी ये हो सकता था ये हो गया। इंटेस्टिनल प्रोलैप्स का आपने सुना होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जायद मिकदार में तेजी से खा ली तो ये तब हो चुका है मरीजों के साथ। रिकमेंडेड यही होगा कि खाना इफ्तार जब करें तो इफ्तार में हम पानी के साथ करें एक, और कम मिकदार के अंदर खाना पीना से ही हम इफ्तार शुरू करें। इवन इसकी स्टडी भी मैंने पढ़ी हुई कि पानी का टेम्परेचर भी ज्यादा हाई ना हो, क्योंकि आपका निजाम हाजम पूरा सिस्टम अभी क्लोज्ड है। अगर हम अचानक से एकदम से ठंडा पानी, ज्यादा मीठा पानी अगर ले लिया, ये आपके निजाम हजम को भी खराब करेगा एक, दूसरा मेदे के सिस्टम को भी खराब करेगा दो, तीसरा रिस्क डेवलपिंग आपके पैनक्रियास के ऊपर, जैसे ज्यादा शुगर है, ज्यादा चीनी है, ज्यादा ठंडा है, तो ये स्ट्रेस बढ़ाएगा पैनक्रियास के ऊपर, जो कि रिस्क कर देगा आपको इंसुलिन का सर्ज में रिलीज हो जाना, वो आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जा सकता है।
इफ्तार के बाद लोगों की कंप्लेंट होती है, क्लिनिक्स के अंदर आते हैं कि उन्होंने इफ्तार की, इफ्तार खाने के बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, इसकी क्या वजूहत होती है कि ऐसी चीजें पेट में दर्द शुरू कर
दिया? ये तो सीधी सी अंडरस्टूड सी बात है, 15 घंटे आपने खाली पेट रखा हुआ, फिर अचानक से आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दी जो मेदे में सलाहियत नहीं एकदम हजम करने के लिए,
ठीक है,
इतना आपने वर्क लोड मेदे के ऊपर डाल दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पर विद इन 15 घंटे के फास्टिंग के बाद आधे घंटे के अंदर आपने जूस भी पी लिया, पानी भी पी लिया, उसको दूध वगैरह भी पी लिया, कबाब भी खा लिया, समोसे भी खा लिए, तो एक अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये आपका काम तो नहीं करेगा, गैस डेवलपमेंट होगी, अल्सर डेवलपमेंट होगी, बदहजमी की शिकायत होगी, ये सारी बदहजमी की शिकायतें होती हैं।
ठीक है, तो आपका इसमें मशवरा ये होगा कि आप इफ्तार जो है लाइट लें,
सादा पानी से
लें और हल्की वो इफ्तार करें और गिजा भी हल्की लें। तो गाइड करते मदी चैनल के नाजरीन को कि इफ्तार के अंदर अगर कोई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो वो कैसा है?
साहब इफ्तार में पानी और फ्रूट का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा कर लेंगे ना तो जो रिकवरी जो हो रही है बॉडी के अंदर, जितने भी हमने अभी ये पॉइंट डिस्कस किए, एक तो रिकवरी भी पॉसिबल होगी और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए कि सारे फायदे हमें रोजे से, इतने सारे फायदे होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हमें रोजा रखने के बाद अक्सर लोगों को ये सारे फायदे मिलते नहीं है
जी।
उसकी वजूहत ही यही होती है कि रोजा तो रख लिया जाएगा लेकिन रोजा रखने के बाद वो जो ड्यूरेशन होता है इफ्तार और सहरी के बीच में, वो जितने भी बॉडी ने अपने रेस्ट पे लिया है, रिकवरी हुआ है, हम उतने ही डैमेज कर चुके होते हैं अपनी बॉडी को। तो इफ्तार के वक्त बिलखसूस सादा पानी एक, खजूर दो, फिर तीसरा फैजान मदीना के अंदर ये केले की तरकीब बहुत अच्छी है, केले के भी खाने के इफ्तार के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि केला जो होता है रिच इन पोटेशियम होता है, ये आपकी बॉडी को पोटेशियम भी रिप्लेनिश करता है, प्लस आपका शुगर लेवल उसको भी कंट्रोल कर देता है। और फिर जो फैजान मदीना में हमारी तरकीब है कि हल्की डाइट लेने के बाद पानी, केला, खजूर के बाद फिर फौरन नमाज पढ़ की तरकीब होती है, इससे होता यह कि थोड़ा सा हमने पानी लिया, केला लिया और ये खजूर लिया, नमाज की तरफ हम चले गए, तो जितनी देर हम नमाज पढ़ते हैं उतनी देर में निजाम हजम आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। नमाज के बाद आप भले फिर आप जो इफ्तार करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन कम मिकदार करना।
अच्छा, इसमें आपने एक चीज की तरफ निशान देगी, खजूर की तरफ निशान देगी, क्या मेडिकली कोई बेनिफिट है कि आपने खजूर से ही रोजा खोलना है?
मेडिकली बेनिफिट तो खजूर से भी है, मेडिकल बेनिफिट पानी से भी है, और मेडिकल बेनिफिट तो आपका फ्रूट से भी है, रोजा तो आप किसी से भी खोल सकते हैं। हाँ, खजूर में ये जरूर चीज इम्पोर्टेंट है कि ये कम मिकदार के अंदर ज्यादा आयरन और ज्यादा फाइबर और ज्यादा एनर्जी दे देता है, तो आपको जैसे इतनी देर की फास्टिंग हुई भी होती है तो दो खजूर भी ले लेते हैं तो आयरन, फाइबर और एनर्जी फौरन आपको रिप्लेनिश हो जाती है, यानी फौरन बॉडी को मिल जाती है, काम करने की सलाहियत आपकी इम्प्रूव हो जाती है। खजूर में एक और भी फायदा होता है कि पूरे दिन का जो रोजे की कैफियत होती है इसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो जैसे ही वो हजम होता हुआ फाइबर जिसे जा रहा होता है तो मेदे के अंदर, आंतों के अंदर जितनी भी एसिडिटी, फाजिल मादा होता है वो उसको भी डिजोल्व करता हुआ लेके जा रहा होता है, तो ये खजूर का इफ्तार में ये क्लिनिकल फायदा ये भी होता है।
इसमें खजूर के हवाले से मैंने भी एक स्टडी पढ़ी थी कि इफ्तार में बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि आप दिन भर जो है आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर लेवल काफी हद तक नीचे गिरा हुआ होता है, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब आप खजूर इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट लेते हैं उसका, तो आपको वो शुगर लेवल बड़ी तेजी के साथ उसको नॉर्मलाइज करता है, यानी कि इवन एक खजूर भी आप लेते हैं तो वो बड़ी तेजी के साथ उसको नॉर्मलाइज करता है। तो इसके बाद आपने उमूमी तौर पे देखा होगा खजूर खाने के बाद काफी फ्रेशनेस फील करता है आदमी, एक या दो खजूर खा लेता है और एक गिलास पानी पी लेता है तो काफी हद तक फ्रेशनेस महसूस होने लग जाती है। तो इसमें खजूर से इफ्तार करने के मदनी चैनल के नाज़रीन काफी बेनिफिट्स हैं, डॉक्टर साहब ने भी उसमें बयान किए हैं। और निज़ाम हजम के हवाले से एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो होती है, वो होती है अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर भी जिसको कहते हैं, या ड्यूडिनल अल्सर, या और एक बीमारी होती है जिसको आप तेजाबियत, गैस्ट्राइटिस वगैरह जो है ये उमूमी तौर पे होती है। तो उसके हवाले से हम बात करते हैं कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी बचाव कैसे होता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको तेजाबियत वगैरह की शिकायत होती है, पेट में दर्द यानी अल्सर वगैरह की शिकायत होती है, अब ऐसा मरीज के लिए क्या आप मशवरा देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? आया रोजा रखना उनके लिए फायदेमंद होता है? दूसरा, इफ्तार में उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए या सहरी में उनको क्या एहतियात करनी चाहिए?
डॉक्टर साहब, इसमें तो दो तरह के पेशेंट हम लेंगे। पहले एक वो मरीज जो ऑलरेडी अल्सर डायग्नोस्ड है और उनको डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन दी हुई है, अमूमी तौर पर जो डायग्नोस्ड होते हैं उनके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन मौजूद होती है, तो वो सहरी के वक्त अपनी मेडिसिन जो अल्सर से रिलेटेड या मेदे से रिलेटेड जो भी दवा उनके पास है डॉक्टर के मशवरा करके सहरी के वक्त वो ले लें, एक, और इफ्तार के वक्त भी वो ले सकते हैं। वो पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं, अल्सर का मर्ज है, मेदे में तेजाबियत का मसला जिनको मौजूद है, वो रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ने चाहा तो रोजा रखने से इनके मेदे के अंदर जो अल्सर है ही ये इम्प्रूव्ड होगा, यानी बेहतरी की तरफ आएगा। अब अल्सर इटसेल्फ क्या होता है? अल्सर बेसिकली आपको मालूम होगा कि ये मेदे के अंदर एक जख्म होता है, सोजिश होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, वो मेदे की जो लाइनिंग होती है वो खराब हो चुकी होती है। अब हम खाना पे खाना खाते जाते हैं, वो खाना जाता ही मेदे के अंदर है, तो हीलिंग का जो प्रोसेस है यानी हील होने का, उस जख्म को हील होने का टाइम तो मिलता नहीं है। वाहिद रोजा ऐसी एक कैफियत है, कंडीशन है जिसके अंदर हीलिंग का ड्यूरेशन 15 घंटे है।
जी,
डायग्नोस पेशेंट है अल्सर का, उसके पेट में अगर अल्सर है या आंत के अंदर अल्सर है तो उनको 15 आवर्स मिल गए हीलिंग के, मॉर्निंग के में इन्होंने अपनी दवा ले ली है तो इनका हीलिंग हो रही होगी। अल्सर
हीलिंग से मुराद ये है कि उसका ठीक होने का जो प्रोसेस
हो रहा
होगा, आराम से ठीक
की तरफ
आ रहा होगा,
यानी जो जख्म बन गया मेदे के अंदर वो बेहतर हो रहा होगा। एक अब ये इफ्तार कर देते फौरी, फौरन इफ्तार करने से अब यूं समझ लें कि जख्म अगर आपका हल हील हो रहा है या ठीक हो रहा है या बेहतर हो रहा है, उस पर अगर आपने मसाले वाली चीज ले ली, दूसरा हैवी डाइट ले ली, तीसरा ज्यादा घी वाली चीज ले ली, चौथा बहुत ठंडी चीजें ले ली, तो यह समझो जितने दिन में 15 घंटे में जख्म आपका ठीक होने लगा था मेदे का, वो तो फिर वो वहीं का वहीं दोबारा आके खड़ा हो जाएगा।
बिल्कुल
सही, मेदे की भी अपनी कैपेसिटी होती है, जैसे कि कोई बच्चा है उसकी मेदे की कैपेसिटी 1 लीटर, दो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस मेदे की यानी पेट में स्टोर करने की जो सलाहियत है 2 लीटर या 3 लीटर। हम अमूमी तौर पे इफ्तार अगर जब अमूमी तौर पे जो कर रहे होते हैं 3 से 4 लीटर तक का तो हम खाना ले चुके होते हैं पेट में,
ठीक,
तो जितने जायद में खाना जाएगा उतने मेदे में स्ट्रेचिंग होती है, जब मेदे में स्ट्रेचिंग होगी तो जाहिर सी बात है जो स्किन होती है अंदर की जो जिल्द होती है वो भी स्ट्रेच होगी, उसमें जख्म जो हील थोड़ा सा भी बेहतर हुआ होगा मजीद खराब हो सकता है, एक मुमकिन है कि नए जख्म भी बन जाए, दो, इसीलिए आपके नॉलेज में होगा कि बिलखुसूस इफ्तार के बाद मेदे में जलन की शिकायत की बहुत सारी कंप्लेन आती है, ओवर ईटिंग होती है, मेदे की कैपेसिटी अपनी कम होती है, जो खाने की नाली होती है इसको नॉर्मली बंद हो जाना चाहिए, वो बंद उस सूरत में होगी जब मेदे की कैपेसिटी से कम खाया होगा तो वो खाने की नाली बंद हो जाएगी, लेकिन जब कैपेसिटी ज्यादा होगी मेदे के अंदर खाने की तो वो रिफ्लक्स करके ऊपर की तरफ को आता है खाना, जब वो ऊपर की तरफ आता है तो हमें लगता है कि सीने में जलन मच रही है, बेसिकली सीने में जलन नहीं मच रही होती, ये जलन वगैरह जो होती है खाने की नाली के अंदर होती है
जी,
जो जायद खाने की वजह से।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो इसमें सिर्फ इफ्तार की एहतियातें हैं या सहरी में भी इनको कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे मरीज को, ये सहरी में जो मर्जी खा लें?
डॉक्टर साहब, इनको एक तो जो मरीज ऑलरेडी जिनको डॉक्टर साहिबान ने डायग्नोस किया हुआ है कि आपको मेदे का मसला है, और जिनको अमूमन सारे मरीजों को जिनको है पता, तो उनको पता ही होता है, तो वो इफ्तार के अंदर भी बिल्कुल लाइट गिजा रखें, हल्की गिजा से सहरी करें।
सहरी में जिगर पे इसका बेसिकली क्या असर पड़ता है? हेपेटाइटिस के हवाले से आपने बड़ी बात की थी, और हमारे मुल्क के अंदर हेपेटाइटिस बड़ी कॉमनली बीमारी हो गई है।
जिगर का बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर काम क्या है? जिगर बेसिकली जिस्म का एक स्टोर हाउस है।
ओके।
मुस्तकिल जितने भी विटामिन, मल्टी विटामिन वगैरह होते हैं, वो जिगर के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। एक तो जिगर का दूसरा काम ये होता है कि हमने जो चीज भी खाई है उसको हजम करने के लिए बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है, वो पित्ते में जमा होता है, वो पित्ते से फिर छोटी आंत में रिलीज होता है, यानी हाजमा करने के लिए जिगर जो होता है वो बाइल एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी हाजमे से रिलेटेड अक्सर चीजें जिगर में बन रही होती हैं।
ठीक।
दूसरा काम जिगर का ये होता है, हमारे जो विटामिन वगैरह ये स्टोर कर रहा है। आप कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस ई भी अब ज्यादा कॉमन हो चुका है।
जी, ये डेल्टा है,
डेल्टा भी आ चुके हैं। तो अब ये इनमें क्या होता है, ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, ये अफेक्ट ही जिगर के खलियों को करते हैं। ये वायरस होते ही हिपेटोसाइड यानी जिगर के खलियों के अंदर ही होते हैं,
मतलब जिस्म के किसी और ऑर्गन पे ये अटैक नहीं करेगा, जिगर पे अटैक करेगा,
इसलिए तो हिपेटाइटिस बी होता है
जी,
हिपेटाइटिस सी होता है, क्योंकि ये अफेक्ट ही जिगर को ज्यादातर किए हुए, जिगर के अंदर समझ लें ये रह रहे होते हैं वायरस। अब चूंकि जिन खलियों के अंदर आपके अफेक्टेड हो चुके होंगे, तो एक कम्युलेटिव जो होता है कि काम करने की सलाहियत जिगर की अब आपकी कम हो गई है। अब जैसे ही हमने खाना खाया तो मछली की कैफियत हो गई, एक दूसरा बदहजमी शुरू हो जाती है। ये सिम्टम इसी तरह उन पेशेंट के अंदर भी मिलती है जिनको पित्ते में पथरी के अंदर भी शिकायत मिलती है, और तीसरी फैटी लीवर की बहुत आम कंप्लेन है। अभी फैटी लीवर के पेशेंट है, गॉल ब्लडर के स्टोन के पेशेंट है, हिपेटाइटिस वगैरह के जितने पेशेंट है, अगर ये रोजा रखेंगे तो यकीनन इनके जिगर के अंदर फायदेमंद ही होगा। वो पेशेंट जिनको हो चुका है, अगर किसी मरीज हिपेटाइटिस ए और ई भी हो चुका है, तो रोजा रखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, इनको जिगर का अपना रिसाइकलिंग और हीलिंग का प्रोसेस होगा, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा और इनको फायदा ही होगा
इंशाल्लाह। तो आपके मतलब ये कि हेपेटाइटिस बी सी या हेपेटाइटिस किसी भी वायरस का मरीज हो, रोजा रखने में कोई उनको हर्ज नहीं है, अपने मौलिस से मशवरा रोजा रख सकते हैं,
क्योंकि जैसे जो हेपेटाइटिस बी हैं और सी हैं, इन दो के जो पेशेंट है, इनका तो कुछ कैरियर होते हैं, कुछ एक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं, जो इनके कंसर्न डॉक्टर होंगे उससे पहले ये अपना टेस्ट करवा लेंगे, उसका जो लेवल होता है वो मॉनिटर हो जाएगा इनका वो डॉक्टर।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर दें, आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, कैरियर का इस्तेमाल किया है और एक्टिव स्टेज का, तो अगर ये थोड़ा सा क्लियर कर दें तो हमारे बंदी चैनल के नाज़रीन के लिए।
डॉक्टर साहब, कैरियर से मुराद ये कि आप किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया,
ठीक है,
सही, अब ये इन्फेक्टेड हो गया, नहीं जरासीम उनके जिगर के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ सिम्टम बीमारी के यानी अलामते बीमारी की नहीं आ रही,
ठीक है,
सही, ये कैरियर कहलाएंगे। कभी ऐसा वक्त आएगा जिससे कि कुव्वत मुदाफियत कम हुई, तो ये वायरस जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तो जो अलामतें आना शुरू हो जाती है, बदहजमी की अलामत आ गई, पेट का फूलना हो गया, मछली की कैफियत आना हो गई, हेपेटाइटिस की आम कंप्लेंट्स है, तो ये हो गया एक्टिव स्टेट। अब इस एक्टिव स्टेट के अंदर वायरस एक्टिवेट हुआ हुआ था,
तो इसका मतलब ये है कि हम कैरियर अगर उनको कहें आसान लफ्जों में कि वो पेशेंट जिनके अंदर जरासीम तो मौजूद होते हैं
जी
हेपेटाइटिस के, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं, अगर आसान लफ्ज बोले सोए हुए होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते, आपको कोई डैमेज नहीं दे रहे होते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, इज इट क्लियर? उसके बाद जो सेकंड होता है जो आपने बताया कि एक्टिव, अब उसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो एक्टिवली आपके जिगर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, मेरे ख्याल में इसी वजह से जब अद्वियात का डिसीजन लिया जाता है वो इसी वजह से लिया जाता है कि एक्टिव है या नहीं है।
सही,
मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर एक्टिव है वो तो उनके लिए अद्वियात दी जाती है, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर अद्वियात रोक दी जाती हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि कितने अरसे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है, 6 महीने के बाद दोबारा रिपीट करवा के देखते हैं। तो उसमें एक्टिव और कैरियर ये बेसिकली फर्क आ जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, अभी निजाम हजम के हवाले से हमने डॉक्टर साहब से काफी मदनी फूल ली और उनमें हेपेटाइटिस के हवाले से भी बात की, जिगर के हवाले से भी बात की। एक और बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो मिलती है हमें, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे क्या असरात होते हैं रोजे की हालत में? ब्लड प्रेशर के मरीज काफी जहन में लोगों के सवाल आता है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रोजा किसी भी सूरत के अंदर जो है छोड़ने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी अपने मालिक से मशवरा करके दवाओं की एडजस्टमेंट की जा सकती है और उसके हाथ से रोजा रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर कुछ पंदी फूल दे दें कि रोजा रखने से ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ता है क्या?
डॉक्टर साहब, रोजा रखने से ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इनफैक्ट वो मरीज जो डायग्नोस्ड है हाई ब्लड प्रेशर के, अगर रोजा रखेंगे ना तो इंशाल्लाह इनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे आने लगेगा। इसका हम रिजल्ट यूं भी चेक कर सकते हैं, वो पेशेंट जो नॉर्मल है जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ही नहीं, जब वो रोजा रखते हैं तो शाम के टाइम पे इनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे आ रहा होता है। वो रीजन क्या होता है? इन्होंने तो कुछ ऐसे कुछ बदतरीजी की भी नहीं है ना, कुछ ऐसा काम किया, फिर भी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे आ रहा होता है। सॉल्ट इनटेक कम होता
जी,
एक। फिर दूसरा, ब्लड प्रेशर के ऊपर जो होता है रिजल्ट रोजे का, ये कम्युलेटिव है। जैसे हमने पिछले सिलसिले में डिस्कस किया, रोजा रखते हैं, रोजा रखने से चिकनाई में कमी, दिल की काम करने की सलाहियत बढ़ जाना, जब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है तो ब्लड प्रेशर भी बैलेंस होने लगता है, एक। दूसरा, जो नमक का जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो नमक का जो इनटेक हो रहा होता है वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। स्टडीज बेस है ये, रिसर्च बेस भी है कि वो पेशेंट जो अंडर एक्सपेरिमेंट आए हैं और जो डायग्नोज थे फॉर हाई ब्लड प्रेशर, रोजा रखा है, रोजा रखने के बाद इनका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हुआ है। और ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टर साहब एक चीज ये अर्ज करता चलूं, हाई ब्लड प्रेशर जरूरी नहीं कि हर वक्त हाई ही हो।
सही,
जिस वक्त हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले रहे होते हैं ये उस इंस्टेंट का ब्लड प्रेशर होता है
जी।
अक्सर ये मिस डायग्नोज भी हुआ हुआ होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और ब्लड प्रेशर हमें हाई मिल रहा होता है। तो वो मरीज जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, वो अपना ब्लड प्रेशर सुबह दोपहर शाम अपना मॉनिटर करके रखें। जरूरी नहीं कि जिस वक्त हम डॉक्टर के पास जाएं उस वक्त ही ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग आए वो इंडिकेटिव हो कि ब्लड प्रेशर हाई है।
बिल्कुल,
जनरल जो होगा कि रोजा रखने से हाई ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस होके नॉर्मल साइड पे आने लगेगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल सही फरमाया। ब्लड प्रेशर की बेसिकली वजूहात क्या होती हैं? वजूहात पे अगर आप गौर करें तो इसमें यही होता है कि आपकी या तो कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, घर में घरेलू कोई फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी वजह से होती है, या कुछ और दूसरी ऐसी रिलेटेड चीजें होती हैं, बीमारियां होती हैं जो आपके साथ होती हैं। पर्टिकुलरली कोई वजह नहीं नजर आती फिल वक्त, अभी तक कोई ऐसी स्टडी में कोई खास वजह नहीं नजर आती है, सिर्फ ये दो तीन चीजें।
95% केसेस ये हैं कि अननोन है,
अननोन, बिल्कुल प्राइमरी काज कोई नहीं, सेकेंडरी काज हम अपनी जबान में कह सकते हैं कि सेकेंडरी काज तो बहुत सारी मिल जाती है आपको। ऐसे ही अगर इसमें फर्ज करें आपको खुदा ना खास्ता कोई दूसरी सेकेंडरी काज हो रही है, कोई और दूसरी वजह से ब्लड प्रेशर है, जैसे कोई कार्डिक प्रॉब्लम हुआ हुआ है, अब कार्डिक प्रॉब्लम भी क्यों हुआ, ब्लड प्रेशर भी क्यों बढ़ा, इसके हवाले से भी आप गौर करें कि आपके जिस्म की चिकनाहट वगैरह अगर बढ़ती है, वो आपकी उसमें नालियों में, खून की नालियों में जाती है, खून की नालियों में जाने के बाद वहां पर जमा होती है, जमा होने के बाद डेफिनेटली रुकावट पैदा होती है, जो फ्लो चाहिए होता है आपको वो फ्लो प्रॉपरली मिल नहीं पा रहा होता, जब वो फ्लो नहीं मिल पा रहा होता डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा होता है। लेकिन जब आप रोजे की हालत के अंदर होते हैं तो रोजे की हालत के अंदर आप फास्टिंग कंडीशन के अंदर होते हैं, आपके सिस्टम्स जो है काफी हद तक बेहतर होते हैं, और इसी तरह जो है आपका हार्ट जो है, हार्ट की भी पोजीशन जो है, दिल की पोजीशन भी जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है कि उसको काम करने का, प्रॉपर वर्क करने का वक्त मिल रहा होता है। तो अगर आप अपनी चीजों का भी ख्याल रखेंगे, डाइट का, खुराक का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का एहतियात करेंगे, ये ना हो कि आपने इफ्तार और सहर दोनों रोजे से हट के बदपरहेजी में आपने इस्तेमाल की चीजें और उसके बाद दवा भी आपने खाई, तो आपको शायद वो फायदा नहीं हासिल हो पाएगा जो आप रोजे से हासिल करना चाहते हैं। तो जो एहतियात अपनी जगह पे, दवा अपनी जगह पे, एहतियात और दवा दोनों को मिला के अगर आप चलेंगे तो यकीनन आपको इंशाल्लाह इसमें काफी हद तक फायदा होगा। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बात हुई, एक आपने बात की थी दिमाग के हवाले से भी। रोजे की हालत में उमूमी तौर पर देखा गया है कि चिड़चिड़ापन लोगों में बहुत पैदा हो जाता है, क्या रिलेटेड होता है वाकई कि रमजान में या रोजे की हालत में कोई ऐसा दिमाग पे असर पड़ता है कि लोगों में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है?
अब अक्सर ये साइकोलॉजिकल होता है,
नफ्सियाती होता है,
नफ्सियाती होता है, ठीक है। एक उन मरीज में ज्यादा होता है जो किसी एडिक्शन के आदि होते हैं,
ठीक है,
जैसे कि स्मोकर होते हैं, सिगरेट के आदि होते हैं, पान वगैरह के आदि होते हैं,
पान गुटखा वगैरह के,
तंबाकू नुशी के आदि होते हैं और छालिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो किसी एडिक्शन के आदि होते हैं। वो जब चीज इनको अवेलेबल नहीं हो रही होती है 12 घंटे, तो ये साइकोलॉजिकल एक थोड़े विड्रॉल सिम्टम आ रहे होते हैं। ये अब हम यूं कर सकते हैं कि बॉडी जो होती है हमारी, अब जैसे ये जो रमजान मौजूद है अल्लाह के करम से, इसमें अगर हम चाहें तो ये पान गुटखा सिगरेट ये सारी चीजें हम आसानी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम 15 घंटे तक तो हम ये छोड़े हुए होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिक चेंजेस कहलाते हैं कि समझ लें कि आप ये 2 से 3 दिन तक ये चिड़चिड़ापन ये वक्ती तौर पे आएगा, फिर 4 या 5 दिन बाद ये सिम्टम खत्म होना शुरू हो जाएंगे,
ठीक।
अब ये जो ये अमूमी तौर पे चिड़चिड़ापन जो रोजे में आता है ये उन लोगों में आता है जो किसी एडिक्शन के आदि होते हैं, एक। दूसरा जो वजह बनती है वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी बनती है और लो ब्लड ग्लूकोज की वजह से भी बनती है, कि दोपहर के बाद कम अमूमन अफ्तार से कुछ अरसे पहले ब्लड प्रेशर भी लोअर साइड पे अक्सर जा रहा होता है
जी।
शुगर भी लोअर साइड पे जा रही होती है, तो थोड़ी मिजाज के अंदर तब्दीली आ रही होती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती,
ठीक है।
वो लोग जो रोजा रखने के आदि होते हैं या रोजा मुस्तकिल रखते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि 25वें या 26वें रोजे को ही वो कैफियत न मिलेगी जो पहले या दूसरे रोजे को मिलती थी। मिजाज में एकदम चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, 25वें 26वें रोजे को आप स्टेबल होते हैं अमूमी तौर पे जो मुस्तकिल रोजा रख रहे होते हैं।
इसमें मतलब रोजे की हालत के अंदर बेसिकली रोजे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है,
तो इट्सेल्फ प्रोटेक्टिव रोल है।
एग्जैक्टली मैं वही असल में पूछना चाह रहा था कि रोजे से क्या बेनिफिट, लोगों को चिड़चिड़ापन तो पैदा हो जाता है और
तो चिड़चिड़ापन उनको पैदा हो रहा है जो किसी एडिक्शन के आदि
नहीं। ऐसे ऐसे काफी केसेस देखे, एडिक्शन वाली बात जो कह रहे हैं वो आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कई ऐसे पेशेंट भी नजर आते हैं जो इन चीजों के एडिक्शन के आदि नहीं होते हैं किसी भी चीज के, लेकिन उसके बावजूद में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ रहा होता है। तो उसकी कोई साइकोलॉजिकल वजह तो नजर आती है कि नफ्सियाती तौर पे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप रोजे में हैं, 12 घंटे से कुछ नहीं खाया या 14 घंटे से कुछ नहीं खाया और दफ्तर से भी होके आ रहे हैं आप, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, एक रश होता है, तो वो एक नफ्सियाती तौर पे चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन एक्चुअल अगर क्लिनिकली तौर पे देखा जाए, मेडिकली तौर पे देखा जाए, तो रोजे की हालत में दिमाग पे बेसिकली फायदे क्या होते हैं वो आप बयान फरमा दीजिए।
असली जो रोजे जो बेसिकली रख रहा है ना सही मानों में और सही तरीके से, तो इसमें रोजे के दिमाग पे तो बहुत अच्छे मुस्बत फायदे हैं। जैसे दिमाग के अंदर वो BDNF फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं रोजे की हालत के अंदर वो रिलीज होते हैं, वो रिलीज होने के बाद दिमाग के जितने भी खलिये होते हैं वो न्यू न्यूरॉन जो होते हैं वो रीजनरेट भी हो रहे होते हैं, केमिकल्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है, कुछ बीमारियां एंग्जाइटी डिप्रेशन अल्जाइमर की बीमारियां पार्किंसन की बीमारियां ये रोजा रखने से इसमें इम्प्रूवमेंट नजर आई है। और ये चिड़चिड़ापन वगैरह आपको शुरू में मिल जाएगा, लेकिन आप देखेंगे उन्हीं पेशेंट को आखिरी के रोजों के अंदर ये फाइंडिंग उनमें नहीं मिलेगी,
ये चीजें नहीं होंगी,
ये फाइंडिंग आखिरी के रोजों में बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि रोजे मुस्तकिल 20-25 रोजे रखने के बाद दिमाग के अंदर काफी डेवलपमेंट आ चुकी होगी।
आपका क्या फरमाते हैं कि कोई अगर ऐसे डिप्रेशन का शिकार है मरीज, नफ्सियात का शिकार है मरीज, जैसे नफ्सियाती पेशेंट्स भी कई होते हैं, तो उनके लिए क्या आप मदनी फूल देते हैं कि रोजा उनके लिए बेनिफिट होगा ऐसी सूरत के अंदर?
ये 100% डॉक्टर साहब इन सारे पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। अब हम तो यहाँ पे ये रमजान के हवाले से रोजे के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है इसको बोलते थेरेप्यूटिक फास्टिंग भी कराई जाती है।
ओके,
यानी इंडिकेटिव फास्टिंग, यानी लोगों को ट्रीटमेंट के तौर पे खाली पेट भी रखवाया जाता है, कुछ लोगों को वाटर फास्टिंग भी कराई जाती है, ये सारे वो पेशेंट होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं, लेकिन इस तरह की बीमारियों में रिजल्ट पॉजिटिव ही मिल रहे होते हैं। जैसे कि डिप्रेशन के जो मरीज हैं डायग्नोस्ड हैं, इनको कोई न्यूरोलॉजिस्ट ऑब्वियसली देख ही रहा होगा
जी,
तो वो इनको यही सजेस्ट करेगा कि ये सुबह मॉर्निंग में अपना डोज लेना चाहें तो मॉर्निंग में अपना डोज ले लें, लेकिन रोजा रखने से डिप्रेशन खराब नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह जबजल रोजा रखने से डिप्रेशन और दीगर जुमला दिमागी अमराज है इसमें पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, रोजा रखने के साथ साथ मदनी चैनल के नाजरीन, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि दिमागी सेहत के ऊपर काफी हद तक फायदा होता है, तो रोजे के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है नमाज। और नमाज की जो कैफियत होती है रोजे की हालत में, आप 5 दफा सजदा जब कर रहे होते हैं तो सजदे की कैफियत में जो हमारी खून की सप्लाई है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जिस्म से काफी ऊपर की तरफ है तो ऊपर हमेशा स्लो चीज चढ़ती है, नमाज में सजदे की पोजीशन वाहिद ऐसी होती है जो दिमाग हमारा दिल की पोजीशन से नीचे आ जाता है, तो उस पोजीशन के अंदर दिल की जो आपकी पंपिंग है, सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से होने लग जाती है, खून की सप्लाई अच्छी तरीके से होने लग जाती है, तो उसमें आपको रिफ्रेश दिमाग हो जाता है काफी हद तक, और उसके अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म के न्यू न्यूरॉन्स बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जब आप रोजा भी रखेंगे और 5 वक्त की नमाज भी बजमात अदा करेंगे तो इंशाल्लाह सोजल तमाम जो आपकी सोचे हैं, डिप्रेशन है, टेंशन वगैरह है, इंशाल्लाह सोजल उसमें काफी हद तक फायदा होगा। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم
رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا اهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا